ओम शांति। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन महीने के चतुर्दशी चौदस के दिन आता है, अमावस्या से एक दिन पहले। और इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा कलयुग की सृष्टि के अंत में आते हैं विनाश से कुछ समय पूर्व। इसलिए अमावस्या से एक दिन पहले चौदस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो परमात्मा कलयुग अंत से कुछ समय पहले इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अंधकार को, जो कि अज्ञान अंधकार माना जाता है, उसको समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाते हैं। इसलिए परमात्मा शिव के अवतरण का ही यादगार महाशिवरात्रि है। वर्तमान समय अगर हम शिवरात्रि मनाते हैं तो इससे तो बहुत बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे परमात्मा की याद आएगी। क्योंकि आज मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव ही परमात्मा है, इसलिए ऐसे ही रीत रसम अनुसार मनाते रहते हैं। लेकिन ये अगर समझ आ जाए कि ये तो निराकार ज्योति स्वरूप सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा, कल्याणकारी सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का ही यादगार है, जब उन्होंने इस सृष्टि पर अवतरण लिया था उसका ही यादगार पर्व शिवरात्रि है, तो मनुष्य बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत श्रद्धा से, भावना से मनाए। आज वो नहीं जानने के कारण मना लेते हैं, लेकिन अगर ये समझ जाए तो क्यों नहीं हम परमात्मा की दिव्य स्मृति में रहेंगे और उसी के आधार से, उनकी याद से जो सुख शांति आत्मा को मिलेगी वो एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इसीलिए शिव परमात्मा को पहचान करके अगर हम उनका अवतरण दिवस मनाते हैं, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्राप्ति होती है। वैसे जब शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है तो भक्त लोग बहुत दूर दूर से गंगा जल ले आते हैं और पैदल निकल पड़ते हैं शिव के मंदिर की ओर, और शिव के मंदिर में पहुंचकर शिव को गंगा जल से अभिषेक करते हैं और बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं, जैसे अक के फूल है, धतूरा है, यहाँ तक कि भांग भी ले आते हैं और बेलपत्र होते हैं और कई प्रकार की चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। और उस दिन खास उपवास भी रखते हैं, रात को जागरण भी करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब करने से हमें शिव से मुक्ति प्राप्त होगी। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य जानना बहुत जरूरी है, तभी परमात्मा शिव से मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। वह अगर देखा जाए, कोई भोजन का उपवास या व्रत की बात नहीं है, परंतु उपवास माना नजदीक में वास, यानी परमात्मा के नजदीक में मन बुद्धि को ले जाएं, यही सच्चा उपवास है। और व्रत अर्थात कोई ऐसी प्रतिज्ञा हम अपने जीवन में करते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। इस हिसाब से व्रत रखना ये शिव के आगे अपनी प्रतिज्ञा प्रकट करना है। और फिर उसके बाद अक या धतूरा, ये फूल चढ़ाते हैं, ये कड़वे फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं, ये बुराइयों का सूचक है, क्योंकि हर आत्मा में पांच विकार विद्यमान हैं। और कैसे परमात्मा शिव जब आते हैं तो हम अपनी बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शिव पर अर्पित करते हैं और शुद्ध पावन बनते हैं। तो गंगा जल भी शुद्ध पावन स्थिति का सूचक है। तो परमात्मा को जब हम अपना जीवन इस प्रकार अर्पित करते हैं, अपनी बुराइयां अर्पित करते हैं, उनकी याद से हम पावन बनते हैं, उनके निकट वास करते हैं, उनके आगे प्रतिज्ञा करते हैं, तो इससे बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव के लिए कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। तो परमात्मा शिव की इस प्रकार स्मृति से आत्मा को मुक्ति भी मिलती है, जीवन मुक्ति भी मिलती है, अर्थात शांति भी प्राप्त होती है, सुख भी प्राप्त होता है। और मनुष्य नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाता है, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाती है परमात्मा शिव के साथ संबंध जोड़ने से, इस प्रकार की ऊंची प्राप्ति आत्मा को होती है जो मानव देव बन करके स्वर्ग का भी अधिकार ले सकता है। शिव भोलेनाथ सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भरता है, तो ये जो कहावत है कि भर दे झोली, वास्तव में परमात्मा शिव की ही याद में जब आत्मा रहती है और उनसे संबंध जोड़ती है तो बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है, शुद्ध बन जाती है और परमात्मा शिव ज्ञान का सागर, शांति प्रेम आनंद सुख का सागर है, सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, तो उनसे बुद्धि योग जोड़ने से कैसे मन और बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और जो ज्ञान के रत्न परमात्मा के पास है वो आत्मा को अनुभव होने लगते हैं। तो इसी का ही यादगार बताया है कि शिव के साथ संबंध जोड़ने से आत्मा की बुद्धि रूपी झोली भर जाती है ज्ञान रत्नों से। वैसे शिव के अनेक नाम हैं, शिव के अनेक नामों के अनेक मंदिर भारत के कोने कोने में हैं। उत्तर में अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में विश्वेश्वर और पश्चिम में सोमनाथ, तो ये सारे जितने भी मंदिर हैं ये सब परमात्मा शिव के गुण और कर्तव्य वाचक नाम हैं। जैसे उनको अमरनाथ कहते हैं, परमात्मा सदा अमर है, वो स्वयं भू है, सदा शिव है, तो शिव शंभु मना वो स्वयं भू है, तो अमरनाथ अर्थात कभी भी वो मरता नहीं, न जन्म है न मरण है, इसलिए उसे अमरनाथ कहते हैं। उसे सोमनाथ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान का सोम रस पिला करके हमारे कर्म इंद्रियों को शीतल बनाते हैं। उसे विश्वनाथ भी कहते हैं क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं का वो नाथ है, उनका उद्धार करता है, इसलिए वो विश्वनाथ है। रामेश्वर भी कहते हैं क्योंकि श्री राम का भी वो ईश्वर है। गोपेश्वर भी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण का भी ईश्वर है। देवी देवताओं ने भी शिव परमात्मा का ध्यान कर देव पद पाया। इस प्रकार भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मठ बड़े मशहूर हैं। ये सब शिव परमात्मा के दिव्य कार्य कर्तव्य जो परमात्मा ने सृष्टि पर किए उनकी ही यादगार में ये ज्योतिर्लिंग मठ भारत के कोने कोने में पाए जाते हैं। शिव को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं क्योंकि शिव की ही 3 मुख्य रचना है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव नई सत्युगी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा उसी नई सृष्टि की पालना करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। इसलिए परमात्मा को इंग्लिश में गॉड भी कहते हैं, अर्थात कैपिटल GOD, गॉड अर्थात जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, स्थापना करने वाला, ओ मानो ऑपरेटर, पालना करने वाला, और डी माना डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला। तो परमात्मा के ये 3 रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनके द्वारा स्थापना पालना विनाश का ये दिव्य कार्य सृष्टि का कराया जाता है, इसीलिए परमात्मा को हम त्रिमूर्ति कहते हैं क्योंकि ये 3 कर्तव्य जो हर एक के साथ भी लागू होते हैं, सृष्टि के साथ भी लागू होते हैं, उनके निमित्त ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर है। इसलिए क्योंकि शिव की रचना है तो शिव को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। शिव के आगे नंदीगण जो दिखाया जाता है, वास्तव में शिव क्योंकि निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अब वो ज्ञान कैसे देवे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर भी है, तो ज्ञान देने के लिए उनको साकार माध्यम चाहिए। वास्तव में साकार माध्यम जो एक मनुष्य तन है उसी का ही आधार लेकर परमात्मा ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं, जिसकी ही यादगार नंदीगण अर्थात बैल दिखाया जाता है। वास्तव में शिव परमात्मा कोई बैल पर सवार होकर के नहीं आते हैं, लेकिन पुरुष तन का आधार लेते हैं और जिस तन में वे प्रवेश करते हैं उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका ही यादगार स्वरूप ये नंदीगण है जो शिव के मंदिर के बाहर दिखाया जाता है। और जैसे कई बार बताते, उनके थ्रू ही शिव का दर्शन किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से ही शिव परमात्मा का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव परमात्मा ज्ञान हम आत्माओं को सिखाते हैं। और फिर ये जो सर्प दिखाया है, ये सर्प वास्तव में जहर की निशानी है। वैसे शंकर के लिए कहते हैं कि नीलकंठ हुआ, सागर मंथन जब किया गया तो जहर निकला जिसको शिव जी पी गए, वो तो शंकर दिखाते, वास्तव में शिव परमात्मा हमारा सारा विकार ग्रहण कर लेते हैं, हमारा सारा विकार हर लेते हैं, हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं, इसलिए उसी का ही यादगार सर्प दिखाते हैं शंकर के गले में। और कछुआ वास्तव में निशानी है, एकाग्रता की निशानी है, धैर्यता की निशानी है, और चल अडोल स्थिति की निशानी है। जैसे एक कछुआ होता है, वो बड़ा धीरे से चलता है, वो अपने अंग जब चाहिए तो निकालता है, जब नहीं चाहिए चलना तो अंग समेट लेता है। तो ये समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, वास्तव में ये अनेक शक्तियों का प्रतीक है कछुआ। उसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। तो हम भी जब परमात्मा से योग युक्त होते हैं, शिव से का ध्यान करते हैं, तो कछुए समान हमारी आयु भी बहुत लंबी हो जाती है, और हमारे जीवन में अनेक शक्तियों की धारणा होती है, विषय विकार हमारे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा इन विकारों को हर लेते हैं। इसलिए ये सारी निशानियां जो वास्तव में शिव के साथ है, वो शंकर को दिखा दी है परमात्मा के ये कार्य, पर उन कार्यों को स्थूल रूप में दिखा दिया है कि शंकर के गले में सर्प है या शिव के मंदिर के बाहर एक कछुआ है। तो इन सब का एक आध्यात्मिक रहस्य है जो परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रहता है, कलश रहता है, और उस कलश से बूंद बूंद पानी का गिरता रहता है जो शिव के ऊपर पड़ता रहता है। वास्तव में परमात्मा शिव जब हमें ज्ञान देते हैं, वो तो सागर जितना ज्ञान है, पर हम उस ज्ञान को धीरे धीरे अपने जीवन में धारण करते जाते हैं और शुद्ध और पवित्र बनते जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपना बुद्धि योग परमात्मा शिव से लगाते जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है, हम आत्मा पावन बनती है और शिव के साथ मिलन का अनुभव करती है। तो उस मिलन के अनुभव को या शिव के साथ बुद्धि योग के जोड़ने को, पावन बनने को, वो बूंद बूंद के रूप में दिखाया है जो शिव के ऊपर पड़ती जाती है, और आत्मा का ये शुद्धिकरण होता है, इस लक्ष्य से ये बूंद बूंद शिव के ऊपर गिराई जाती है या पड़ती रहती है। है ये हम आत्माओं की यादगार, जो हम आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, उसी की ये निशानी है कि बूंद बूंद शिवलिंग पर पड़ना। शिवलिंग पर तीन लकीरें लगाई जाती है जो हॉरिजॉन्टल रूप में लगाई जाती है, और उन तीनों लकीरों के बीच में एक बिंदु होता है। तो ये तीन लकीरें भी वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही प्रतीक है, और जो बिंदु बीच में लगाया जाता है, ये शिव परमात्मा का स्वरूप है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के वो रचयिता है, इसलिए वो त्रिमूर्ति होने के नाते और बिंदु होने के नाते तीन लकीरें और उसमें बिंदु दिखाया जाता है। ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सब प्रतीक के रूप में है जो शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो दिन को मनाए जाते हैं और उनका दिन से संबंध है। केवल एक शिवरात्रि का ही त्योहार है जिसका संबंध रात के साथ है। तो वास्तव में ये रात अर्थात अज्ञान की रात, अज्ञान अर्थात जब हर मानव पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पंजे में जकड़ा हुआ है, चारों ओर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर दुख और अशांति व्याप्त है, ऐसे समय पर परमात्मा शिव का अवतरण होता है और परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रकट होकर के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, उसी की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। परंतु जब हम शिव कहते हैं तो हमारा अभिप्राय शंकर से नहीं है, क्योंकि जैसे बताया शंकर भी परमात्मा की एक रचना है और शिव तो परमात्मा है। शंकर के लिए तो कहते हैं कि अगर उसकी तपस्या कोई भंग कर दे और शंकर अपनी आंख तीसरी खोल दे तो वह विनाश करता है, पर शिव को तो कल्याणकारी कहा जाता है, उसे तो भोलानाथ कहा जाता है और शंकर को तो विनाशकारी कहा जाता है, तपस्या करता हुआ दिखाते हैं। तो किसका ध्यान शंकर कर रहा है, जरूर उनसे भी कोई ऊंचा है जिसको ही हम सदा शिव कल्याणकारी कहते हैं। इसलिए शंकर जो है वो तो एक रचना है और शिव परमात्मा है जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। शिव को परम पिता परम आत्मा कहेंगे, जबकि शंकर को महादेव कहेंगे, ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर को महादेव कहेंगे। तो इसलिए इन तीनों देवताओं के लिए तो कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पर शिव के लिए कहेंगे ओम नमो शिवाय, क्योंकि ये परमात्मा का ही स्वरूप है जो निराकार है, जिसका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं है। शंकर को तो सूक्ष्म देह रूप दिखाया है जो तपस्या कर रहा है, तो वो भी शिव का ध्यान कर रहा है, पर शिव तो सदा दाता है, वो तो सुख दाता दुख हरता है, सब उसके भंडारे सदा भरपूर हैं और उनकी याद से ही आत्मा पावन और शुद्ध बनती है। इसलिए शिव और शंकर में इतना अंतर है जैसे पिता और पुत्र के बीच में अंतर। पिता तो कल्याणकारी है और शंकर को एक पार्ट है केवल विनाश करने का, वो भी इस कलयुगी सृष्टि के विनाश का कार्य ये शंकर के द्वारा होता है।